यशाया अध्याय 22। अध्याय 22 में वो यरूशलेम की चर्चा करेगा जिससे वो दर्शन की तराई कहता है। यशाया अध्याय 22 पद 1 से लेकर 4 तक। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो, हे कोलाहल और उधम से भरी प्रसन्न नगरी? तुझ में जो मारे गए हैं वे ना तो तलवार से और ना लड़ाई से मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और धनुधारियों से बांधे गए हैं, और तेरे जितने शेष पाए गए वे एक संग बांधे गए, वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलख बिलख कर रोऊं। मेरे नगर के सत्यनाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। उसके दर्शन में वे तलवार से नाश नहीं किए गए। उनके विनाश को देखकर वो रोता है। उसने कहा, मेरे नगर के सत्यनाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। यशाया अध्याय 22 पद 5 से लेकर 10 तक। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पना में सुरंग लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा, और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं और की ढाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होगी और सवार फाटक के सामने पंक्ति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नाम भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और तूने दाऊदपुर की शहरपना की दरारों को देखा कि वे बहुत है, और तूने निचले पोखरे के जल इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिराकर शहर पना के दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। अब वो उन तैयारियों की चर्चा कर रहा है जो यरूशलेम में अशुरों के आने वाले आक्रमण की प्रतिक्रिया में हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उत्तरी राज्य इसराइल का नाश कर दिया था और अब उनका लक्ष्य यरूशलेम था। अतः हेजकिय्याह तैयारियां कर रहा था। उसने एक सुरंग खोदी जो गीहोन के जल स्रोत से सीलो के कुंड तक थी और 1,700 फुट लंबी थी। ये शहर पना के नीचे पुराने नगर के ओफेल से लाई गई थी। उन्होंने इस चट्टान से ये सुरंग खोदी। गीहोन का जल स्रोत में बहुत जल था जो निकलता रहता था। ये यरूशलेम के मुख्य जल स्रोतों में से एक था। किद्रोन घाटी में ओफेल के नीचे होने के कारण वो शहर से बाहर था। उन्होंने ये सुरंग खोदी और फिर उस सोते को ढाप दिया कि अशुरों को मालूम न हो कि वहां से उसका पानी आ रहा है। तब कुछ घरों को तोड़ दिया कि शहर पना में जो छेद थे उन्हें बंद किया जाए। इस प्रकार वे अशुरों से बचने का यथासंभव प्रयास कर रहे थे। यशाया अध्याय 22 पद 11। तूने दोनों बीथों के बीच पुराने पोखरे का जल के लिए एक कुंड खोदा। भविष्यद्वक्ता इन्हीं तैयारियों के लिए कह रहा है कि उन्होंने शहर पना सुधार ली, पीने के पानी की व्यवस्था आदि की। यशाया अध्याय 22 पद 11। परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी ओर तूने दृष्टि की। कहने का अर्थ यह है, गीहोन का सोता किसने बनाया था? उसमें पानी किसने दिया? शहर पना को अपनी बुद्धि के अनुसार सुधारा गया था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की ओर सहायता या मार्गदर्शन और सुरक्षा हेतु नहीं निहारा। मेरे विचार में यही भूल हम प्रायः करते ही हैं कि हम सब प्राकृतिक काम कर लेते हैं परंतु अलौकिक पर ध्यान नहीं देते हैं। हम परमेश्वर के बल की, परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की सहायता की खोज नहीं करते। आज भी अनेक ऐसे जन खाद सामग्री इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि वे उस आने वाले विनाश के लिए अपने आप को तैयार रखें जिसकी संभावना वो देख रहे हैं। वे परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, वे अगुवाई और सहायता के लिए परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने की अपेक्षा अपनी क्षमता पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि यशाया यहूदा वासियों में दोष देख रहा है। यशाया अध्याय 22 पद 12। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। यहूदी संस्कृति में सिर मुंडाने का अर्थ था परमेश्वर की शपथ लेना। परमेश्वर उन्हें पवित्र होने के और समर्पण करने के लिए पुकार रहा था। परमेश्वर ने कहा था, दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद 14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वे नम्र होकर परमेश्वर को खोजने और प्रार्थना करने की अपेक्षा प्रत्येक प्राकृतिक उपाय सोच रहे हैं और परमेश्वर को कुछ समझ नहीं रहे हैं। निस्संदेह परमेश्वर हमसे ये आशा रखता है कि हम बुद्धि को काम में ले और प्राकृतिक उपायों को खोजें, परंतु उसमें विश्वास रखते हुए और उसकी ओर निहारते हुए, विशेष करके जब परमेश्वर हमें उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसकी बाट जोने के लिए बुलाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उद्धार के लिए साधनों को तलाशना गलत है। जब उन्हें रोना और विलाप करना तथा टाट ओढ़ना था, वे आमोद प्रमोद में लीन थे। यशाया अध्याय 21 पद 13। परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। आज का युग हमें इसी की याद दिलाता है। आज इतिहास का सबसे बड़ा संकट है कि महाशक्तियां युद्ध की तैयारी में लगी हुई है। अमेरिका अपना अधिक से अधिक धन सेना पर लगा रहा है कि वो रूस के विशाल सैन्य संगठन का सामना करने में सक्षम हो, क्योंकि रूसी सेना बहुत उच्च कोटि की है। दूसरे शब्दों में महायुद्ध की तैयारी। अमेरिका को आज परमेश्वर रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, टाट ओढ़ने के लिए बुला रहा है, परंतु वहां के लोग सुख विलास में प्रसन्न हैं। उन्होंने परमेश्वर को तो अपने जीवन से निकाल ही दिया है और उनका मनोभाव ऐसा हो गया है, खा पी और आनंद कर क्योंकि कल तो हमें मरना है। यशाया इसी प्रवृत्ति के पक्ष में नहीं था। यशाया अध्याय 22 पद 14। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यही कहना है। ऐसी प्रकृति का प्रायश्चित नहीं है, निर्णय हो गया है, पासा फेंका जा चुका है, वे दंड पाने तक ऐसे ही रहेंगे। यशाया अध्याय 22 पद 15। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, कैसा भयानक अभियोग पात्र। यशाया अध्याय 22 पद 15 से लेकर 17 तक। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राज घराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे, यहां तू क्या करता है और यहां तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहां कुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में कुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में शेबना, जो राष्ट्र का वित्त मंत्री था, ऊंचे स्थान पर चट्टान में अपने लिए कब्र बनवा रहा था। इसराइल के किद्रोन घाटी में अनेक आकर्षक कब्रें हैं जो चट्टानों में से तराशी गई थी। इनमें से एक इस मंत्री ने अपने लिए बनवाई थी। यशया ने उसे परमेश्वर का वचन दिया कि वो तो बहुत दूर बंदुआई में जाकर मरेगा, उसे ये कब्र नहीं दी जाएगी। मनुष्य भविष्य के लिए योजना बनाता है और परमेश्वर उनकी योजना को नष्ट कर देता है। यशाया अध्याय 22 पद 18 से लेकर 21 तक। वो तुझे मरोड़कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरा वैभव के रथ वही रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंग रखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वो यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। शेबना वित्त मंत्री था और एलियाकीम राजा के परामर्शदाताओं में से एक था। दोनों प्रशासनिक अधिकारी थे। जब राबाशके ने, जो सेनहरीब का संदेश वाहक था, समर्पण की धमकी का पत्र लेकर हिजकिय्याह को दिया था, तब एलियाकीम और शेबना ही थे जो प्रशासनिक विषयों को देख रहे थे। परमेश्वर का चुना व्यक्ति तो एलियाकीम ही था। शेबना एक परदेशी व्यक्ति था जो उस पद पर कब्जा किए बैठा था। वो अपने लिए चट्टान में एक भव्य कब्र बनवा रहा था कि मृत्यु पर्यंत वहां रखा जाए। यशया ने कहा, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा, वो वही खुले मैदान में मरेगा। इन दो व्यक्तियों से संबंधित ये भविष्यवाणी फिर से दो समयों में पूरी होने वाली भविष्यवाणी थी, एक निकट भविष्य में और एक दूर भविष्य में। ये दोनों व्यक्ति उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे। निकट पूर्ति की भविष्यवाणी के अनुसार शेबना को हटाकर परमेश्वर अपने जन एलियाकीम को उस पद पर आसीन करेगा, जब दूर भविष्य में शेबना ख्रिस्त विरोधी का प्रतीक है जो इसराइल को रिझाएगा। तो एलियाकीम मसीह यीशु का, जो वास्तविक राजा है, अपना राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां भविष्य के दो प्रतीक हैं। पद 22 में हम पाएंगे कि यीशु फिलदेल्फिया की कलीसिया का उल्लेख कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस बात का उल्लेख है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 7। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह इस पद को अपने आप से जोड़ता है। यही कारण है कि हमने कहा कि भविष्यवाणी की पूर्ति निकट भविष्य में तथा दूर भविष्य में होती है। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, परंतु अभी उसका पूरा होना शेष है, क्योंकि यीशु इस पद को अपने आप से जोड़ देता है। यशाया अध्याय 22 पद 22, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। ये एलियाकिम के विषय में है। यशाया अध्याय 22 पद 22 और 23, और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा, और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गड़ूंगा, और वो अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। यशाया दूर भविष्य की किरण दिखाकर पुनः निकट भविष्य में आ जाता है। यशाया अध्याय 22 पद 24 और 25, और उसके पिता के घराने का सारा विभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराइयां, सब उस पर टांगी जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उस समय वो खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वो ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है।